ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 10 से 10 से आगे तक है 9 से आगे तक। मेरे पीछे दोहराइएगा, सार्वभौम कहे सत्य, सार्वभौम कहे सत्य तो अमार वचन, दस है, मैंने पूछा था बोला 9 है। अच्छा 10 लिखा है। एनीवे पहले इनके शब्द पढ़ लेते हैं। प्रभु कहे तथापि राजा काल सर्पाकार काष्ठ नारी स्पर्शे यच्छे उपजे विकार। प्रभु कहे तथापि राजा काल सर्पाकार काष्ठ नारी स्पर्शे छे उपजे विकार। प्रभु कहे तथापि राजा काल सर्पाकार काष्ठ नारी स्पर्शे ये छे उपजे विकार। और आइए प्रभु कहे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तथापि फिर भी राजा काल सर्प आकार विषैले सर्प की भांति काष्ट नारी काठ की बनी स्त्री स्पर्शे के स्पर्श से यच्छे जैसे उपजे उत्पन्न होती है विकार उत्तेजना। अनुवाद पढ़ता हूँ श्री बहुपाद द्वारा, श्री बहुपाद की। मेरे पीछे दोहराइए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये सच है कि राजा महान भक्त है फिर भी उसे विषैला सांप ही समझना होगा। इसी प्रकार स्त्री चाहे काठ की ही पुतली क्यों ना हो उसके रूप को स्पर्श करने मात्र से मनुष्य विचलित हो उठता है। तात्पर्य पढ़ता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। इसके तात्पर्य में श्री बहुपाल लिखते हैं, श्री चाणक्य पंडित ने अपनी नैतिक शिक्षाओं में कहा है त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को भौतिकतावादी लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत लोगों की संगति करनी चाहिए। भौतिकतावादी व्यक्ति कितना ही योग्य क्यों ना हो वह विषैले सर्प से अधिक अच्छा नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि सांप भयानक तथा विषैला होता है और जब इसका फन मनियों से अलंकृत होता है तब भी ये कम विषैला या कम घातक नहीं होता। इसलिए भौतिकतावादी व्यक्ति कितना ही योग्य क्यों ना हो वह मनियों से अलंकृत सर्प से अधिक अच्छा नहीं है। अतएव ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहना चाहिए जिस प्रकार की मनियुक्त सर्प से सावधान रहा जाता है। स्त्री चाहे काठ की हो या पत्थर की, सजाने पर वह आकर्षक बन जाती है। उसके स्पर्श मात्र से मनुष्य कामुक हो जाता है। अतः मनुष्य को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इतना चंचल होता है कि किसी भी क्षण अपने शत्रुओं के वशीभूत हो सकता है। मन के साथ सर्वदा 6 शत्रु लगे रहते हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य तथा भय। आध्यात्मिक चेतना में रत मन से भी उसी तरह सावधान रहने की आवश्यकता है जिस तरह सांप से सावधान रहना चाहिए। मनुष्य को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मन प्रशिक्षित हो गया है, अतः वह जो चाहे सो कर सकता है। आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्ति को अपने मन को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना चाहिए, जिससे मन के साथ लगे हुए उसके शत्रु दमित हो जाएं। यदि मन हर क्षण कृष्ण भावनामृत में नहीं लगा रहेगा तो वह शत्रुओं के वश में हो सकता है। इस तरह हम मन के शिकार बन सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से मन कृष्ण के चरण कमलों में निरंतर लगा रहता है, जिससे मन के शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर नहीं मिल पाता। इन श्लोकों के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए हमें मन के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए और उसे किसी भी परिस्थिति में इधर उधर नहीं लगाना चाहिए। एक बार उत्तेजित होने पर मन इस जीवन में विध्वंस कर सकता है, चाहे कोई कितना ही आध्यात्मिक रूप से उन्नत क्यों ना हो। मन विशेषतया भौतिकतावादी पुरुषों तथा स्त्रियों की संगति से उत्तेजित होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी आचरण के द्वारा हरेक को सचेत करते हैं कि भौतिकतावादी पुरुष या स्त्री से भेंट करने से बचा जाए। बहुत ही टफ और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड परपट है, आसान नहीं है। नवा श्लोक करते हैं, मेरे पीछे दोहराइएगा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने जो कुछ कहा है वे सही है, किंतु ये राजा कोई सामान्य राजा नहीं है। ये जगन्नाथ जी का महान भक्त तथा सेवक है। तो यहाँ चर्चा आ रही है श्री चैतन्य महाप्रभु की बेड़ा कीर्तन लीलाएं। इसमें यहाँ पर आया कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो राजा प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु से मिलवाना चाहते हैं। तो इसके पहले के जो दो प्यार हैं उसमें एक प्यार पढ़ता हूँ मैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मैं सन्यासी हूँ, इसलिए मेरे लिए किसी राजा से मिलना उसी तरह घातक है जिस तरह किसी स्त्री से मिलना, इन दोनों का मिलना विषपान करने के तुल्य है। अत्याधिक शोक प्रकट करते हुए महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बतलाया, हाय, जो व्यक्ति भवसागर को पार करना चाहता है और बिना किसी भौतिक हेतु के भगवान की दिव्य प्रेमय सेवा में लगना चाहता है, उसके लिए इंद्र तृप्ति में लगे भौतिकतावादी अथवा ऐसी रुचि रखने वाली स्त्री को देखना जानबूझकर विष खाने से अधिक निंदनीय है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं, हे प्रभु, आपने जो कहा है वह सही है, किंतु ये राजा कोई सामान्य राजा नहीं है, जगन्नाथ जी का महान भक्त तथा सेवक है। ये क्वालिटी तो बता दी। क्वालिटी क्या बताई? पहली क्वालिटी बताई कि राजा कोई सामान्य राजा नहीं, जैसे आम राजा होते हैं जो कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में या भोग विलास में रत रहते हैं, ये राजा ऐसा नहीं है। ये तो एक क्वालिटी बता दी। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो अगर इतिहास पढ़ते हैं हम लोग इतिहास, तो राजाओं की कई पत्नियां होती थी, कई रखेलें होती थी। मुगल बादशाहों ने तो 5,000 रुक की अंदाज ही नहीं था, तो वो एक नारी के प्रति उनका अट्रैक्शन था। पर यहाँ पर जो है चर्चा क्या आ रही है कि राजा कोई सामान्य आम राजाओं की तरह नहीं है, डिफरेंट है। और डिफरेंस क्या है भाई? आप कह रहे हो कि साधारण राजाओं की तरह नहीं है, तो भैया साधारण कौन सी ऐसी बात है जो उसमें नहीं है? खास बात क्या है उसमें? स्पेशल बात क्या है जिसमें उसको आप ये कह रहे हो कि वो सामान्य राजाओं की तरह राजा नहीं है। तो अगले ही सेंटेंस में जो है बात आती है कि ये राजा जो है जगन्नाथ जी का महान भक्त है नंबर एक, और नंबर दो उनका सेवक है। अब यहां प्रश्न आता है भक्ति किसे कहते हैं, भगवान की प्रेममयी सेवा यही होती है ना भक्ति, कि और भी कुछ मीनिंग है इसका। और भगवान की प्रेममयी सेवा करने वाला सेवक, तो यहां जो है ये दो बार एम्फेसाइज किया गया है, दो बार जोर देने के लिए, प्रेशर देने के लिए कि भक्त तो है ही है, भक्ति के सभी अंगों का पालन करता है, परंतु अच्छा सेवक भी है। अच्छा सेवक का मतलब क्या है, अच्छा सेवक कौन है, अच्छा सेवक किसे कहते हैं? मैं आपको अच्छा सेवक हूं तो आप मेरे में क्या गुण देखना चाहते हो? अगर मैं ये कहूं कि मैं आपका अच्छा सेवक हूं तो आप मेरे में क्या गुण देखना चाहते हैं जो मुझे अच्छा बनाए? मतलब जो आप कहो उसमें कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, इफ नहीं, बट नहीं, किंतु नहीं, लेकिन नहीं, परंतु नहीं, डू एज इट इज, जैसा कहा गया वैसा किया गया, तब तो अच्छा सेवक है, नहीं है तो दलील बड़ी करता है, बहस बड़ी करता है, अच्छा नहीं है। अब मैंने कुछ कहा है करने के लिए तो बहस बहुत करता है, तो अच्छा कहेंगे कि ना अच्छा कहेंगे? अच्छा नहीं कहेंगे। मतलब कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई बहस नहीं, कोई किंतु नहीं, लिंती नहीं, परंतु नहीं, कुछ नहीं, एज इट इज जो इंस्ट्रक्शन मिली एज इट इज फॉलो कर दी। तो यहां जो है दो बार ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं एम्फेसाइज करने के लिए कि सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं ये जगन्नाथ जी का महान भक्त है और अच्छा सेवक है। अब महान भक्त के अंदर जो है कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि सेवा, जिसको हम सेवक की सेवा कहते हैं उससे अलग है। समर्पण, पूजा अर्चना वंदना दर्शन सारी बातें जो शबनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आदि निवेदन, जो ये विधियां हैं इनको संपूर्ण करता है। और उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, दास्य। दास्य मीन्स कि सेवा के अंदर जैसी सेवा कही जाती है वैसी सेवा करता है, जैसी सेवा की अपेक्षा करते हैं जगन्नाथ जी वैसी सेवा करता है। अब इसके बाद चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं बात, क्या कहा उन्होंने, यह सच है कि राजा महान भक्त है, मान ली मैंने बात, पर महान भक्त होने के बाद जो छह गुण हैं, जिसको अवगुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इनसे दूर है कि नहीं है? कि सामान्य रूप से राजा इनसे दूर नहीं होते, साधारण मनुष्य भी इनसे परे नहीं होते, साधारण मनुष्यों को भी और जो कुछ कथित उच्च कोटि के मनुष्य हैं या राजा हैं मंत्री हैं उनको भी जो है छह के छह अवगुण जो है घेरे रहते हैं। अब यहां खास तौर पे चर्चा हो रही है कि फिर भी उसे विषैला सांप समझना होगा। यहां शब्द जो है विषैला सांप क्यों इस्तेमाल किया, कोई पर्टिकुलर पर्पस है इसका कि विषैला सांप? अब राजा को विषैला सांप कहा जा रहा है क्यों? विषैला सांप जो है उसको कहने का अर्थ क्या है कि उसके विष से कोई बच नहीं सकता जिसको वो काट दे, मृत्यु निश्चित है। मतलब अगर ये छह के छह अवगुण राजा के अंदर हैं, तो अगर कोई भी सन्यासी या कोई भी भक्त जो है उसके संग में आएगा तो उस पर इफेक्ट जरूर करेंगे। एक नेचुरल ऑरा होता है। हम जब भगवत गीता का 16वां अध्याय पढ़ते हैं जिसमें आसुरी और दैवी प्रकृति का वर्णन है, उसमें एक बात समझ में आती है कि जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति का एक तेज है, एक ऑरा है, इसको हिंदी में तेज कहते हैं, हर व्यक्ति का एक तेज है। आप मंदिर में आते हो तो क्या लाभ प्राप्त होता है आपको? क्या लाभ प्राप्त होता है? भगवान के दर्शन होते हैं, ठीक है, कीर्तन में पार्टिसिपेट करने का, कीर्तन सुनने का आनंद आता है, कथा सुनने का आनंद आता है। मंदिर और उसके आसपास जो एरिया है उसके अंदर जो भगवान के अर्च विग्रह हैं, डीटी है, उसका जो ऑरा है इतना स्ट्रांग है कि वो आपके ऊपर जब अफेक्ट करता है तो आपकी मनोवृत्ति बदल जाती है, आपके सोचने का ढंग बदल जाता है। आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग साधारण भाषा में भक्त लोग क्या बात करते हैं, अरे मंदिर जाते हैं ना तो बैटरी चार्ज हो जाती है, ऐसा शब्द बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बैटरी, कौन सी बैटरी चार्ज हो रही भैया? वो बैटरी है अच्छे विचारों की, शुभ विचार। जो अशुभ विचार हैं वो मन से निकलते हैं, बंदा व्यक्ति जो है अपने आप को बड़ा अच्छा और कंफर्टेबल फील करता है, शुभ विचार मन में आते हैं, यस आज दर्शन हो गए हैं, कथा सुनने को मिल गई है, कीर्तन सुनने को मिल गया है, प्रसाद मिल गया है, आज मैं अपने आप को बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा हूं, जितनी मेरी टेंशन थी सारी खत्म हो गई, मेरी टेंशन सारी खत्म हो गई। जब दो दिन, चार दिन, पांच दिन बीत जाते हैं, वो आसपास के जो व्यक्ति हैं उनका ऑरा आप पे अटैक करने लगता है, आपके ऊपर असर करने लगता है, फिर आप एक टेंशन के फेज में आ जाते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो, फिर मंदिर का रुख करते हो, मंदिर में आते ही फिर वो वॉश हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ब्रज के संत की कहानी सुनाता हूं। ब्रज में एक संत थे, वृंदावन की परिक्रमा किया करते थे रात्रि में, और सुबह 3:30 बजे परिक्रमा खत्म कर देते थे। जब तक लोग उठ के परिक्रमा करना शुरू करें तब तक उनकी परिक्रमा समाप्त हो जाती थी, वापस आ जाते थे अपने आश्रम में, वापस आ जाते थे, कुटिया में आ जाते थे। एक दिन वो, और जब भी परिक्रमा करते थे तो उनके मन में, जब उनके मुख पे जो है हमेशा हरि नाम रहता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लगातार चलता रहता, लगातार चलता रहता था। एक दिन परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने देखा ये ना बहुत सुंदर स्थान है, यहाँ पे एक धर्मशाला बन जाए और उसमें भंडारा होने लगे तो कितना मजा आए, आनंद आ जाए। और जैसे ही मन में ये विचार आया, रुके, रोने लगे और अपने को पीटने लगे कि मेरे मन के अंदर से भगवान की जगह ये भंडारा कहाँ से आ गया, भगवान की जगह ये धर्मशाला कहाँ से आ गई, मैं तो कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ आज तक, ये तो बड़ी अजीब वाक्या है। तो रोने लगे, रोते रोते क्या देख रहे हैं कि उनसे कोई 50 कदम पीछे एक लाला चला आ रहा है, सेठ, सेठ चला आ रहा है। तो उनकी बात समझ में आ गई कि उसका जो तेज है सेठ का, उसका जो ऑरा है, उसने मेरे पे अटैक किया है, और अटैक करते ही मेरी मनोवृत्ति जो है लाला की तरह हो गई है। धर्मशाला लाला लोग बनवाते हैं, बहुत अच्छी बात है, भंडारे लगवाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो एक्टिविटी उन लोगों के लिए नियत है, क्योंकि वैश्य वैश्य हैं तो उनके लिए एक्टिविटी अलाउड करना चाहिए उनको, परंतु मेरे को ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब है कि उसका ऑरा ने मेरे पे अटैक किया। हम लोग कई बार एक प्रश्न करते हैं, प्रभु जी भजन बढ़िया नहीं हो रहा, भजन में मजा नहीं आ रहा, मन जो है ना विचलित हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या बात है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, पूरी हिम्मत लगाता हूं, पूरा पूरा ध्यान लगाता हूं, परंतु वो एक्टिविटी जो है मेरी वो डिस्टर्ब सी रहती है, कोई आनंद नहीं आ रहा मेरे को। तो अब ये देखिएगा कि अगर कोई डेमोनिक पर्सन अर्थात जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो आपके पास से गुजर जाए या आपके पास बैठ जाए, आप किसी जगह बैठे हुए हो वो आपके पास बैठे, वो आपसे ना गाली गलौज कर रहा है, ना आपसे बातचीत कर रहा है, ना आपको बातचीत में उलझा रहा है, ना कोई अपशब्द कह रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपके बगल में बैठ गया, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति आसुरी है तो उसका ऑरा जो है आप पे अटैक करेगा, आपका भजन खराब हो जाएगा, भजन खराब हो जाएगा। भजन में आनंद क्यों नहीं आता है, क्योंकि हमारे कॉन्टेक्ट जो हैं अननोइंगली अनवांटिंगली, हम चाहते नहीं हैं, जानते भी नहीं हैं, पर आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के साथ हो जाता है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज को हम त्याग सकते नहीं, समाज को हम नहीं त्याग सकते, हम समाज से अलग नहीं हो सकते। समाज से अलग होना है तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे किसी कंदरा में हिमालय गुफा में जाकर रहना पड़ेगा। इसलिए उस भजन को अच्छे तरीके से स्थापित करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए, उस ऑरा के इफेक्ट को हटाने के लिए एक ही चीज कारगर है, वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना आप जो है भजन करते जाएंगे उतना उसका इफेक्ट जो है डिमिनिश होता जाएगा, कम होता जाएगा। छठा अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें भी जो है अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आसन की चर्चा हुई है, खान पान की चर्चा हुई है, कैसे ऊंचा बैठना चाहिए, कितना नीचा बैठना चाहिए, सबकी चर्चाएं हो रही हैं, ग्रीवा कैसी होनी चाहिए, कमर कैसी होनी चाहिए। आप एक बार सोचिएगा कि आज से कुछ वर्ष पहले तक, अब आज तो जमाना बदल गया है, टाइम्स हैव चेंज्ड, साउथ इंडिया में केले के पत्ते पे भोजन कराया जाता, ईस्ट इंडिया में केले के पत्ते पे भोजन कराया जाता, नॉर्थ इंडिया में ढाक के पत्ते पे पत्तल बना के भोजन कराया जाता था। ढाक, ढाक बड़ा चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं ढाक के, उसके पत्ते का या तो पत्ते पे भोजन करा देते थे या उसका ताजे ताजे ढाक के पत्ते का पत्तल बनाते, अब तो सूखे पत्तल आते हैं ना, ड्राई पत्तल आ रहे बिल्कुल सूखे, तब ताजे क्लिप लगाया उसमें बांस का टुकड़ा लगाया और ताजे ढाक के पत्तों से पत्तल बनाया और खिला दिया। आइडिया क्या था कि रीयूज ना हो, एक का अटैक जो है एटम्स का, परमाणुओं का, दूसरे पे ना हो जो दूसरा थाली को इस्तेमाल करता। आजकल हम क्या है, थालियां इस्तेमाल करते हैं, प्लेटें इस्तेमाल करते हैं, मालूम नहीं उसमें किसने खाया पहले, शादी ब्याह होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं जाते हैं थालियां मिल जाती हैं, प्लेटें मिल जाती हैं। अब आप किसी बैंकवेट में जाते हो उसमें पहले नॉनवेज सर्व हुआ हो उसी में आप प्लेट में डाल के खाना खा रहे हो, भैया भजन कहाँ से होगा आपका, कंसंट्रेशन कहाँ से आएगी। तो भगवद गीता में कहा जाता है कि व्यक्ति को न तो किसी का आसन इस्तेमाल करना चाहिए, न किसी का गमछा इस्तेमाल करना चाहिए, ना किसी की प्लेट या थाली इस्तेमाल करनी चाहिए, ना रुमाल, मतलब किसी भी प्रकार का वस्तु जो है दूसरे की इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि एक व्यक्ति के जो परमाणु हैं उसमें आ जाते हैं, वो जब दूसरा इस्तेमाल करता है तो उसमें चले जाते हैं, तो आपका भजन खराब हो जाता है क्योंकि उसको पहले पता नहीं किसने इस्तेमाल किया हुआ। इसीलिए कई बार जो है जो साधारण व्यक्ति आता है मंदिर में वो बड़े ऑब्जेक्शन लगाता है, हम कोई अछूत है? ब्रह्मचारी आता है अपनी थाली लेके आता है, धोता है और चल किसी को धोने भी नहीं देता, और हर थाली के पीछे ब्रह्मचारी का नाम लिखा हुआ है, पीले पेंट से लाल पेंट से नाम लिखा हुआ है कि उसकी थाली है, कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं करे। बिकॉज दिस क्रिएट्स पॉजिटिविटी एंड प्योरिटी, पवित्रता आती है। तो यहां यह है कि जब काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जब अटैक करते हैं व्यक्ति के ऊपर, तो वो वैसा ही हो जाता है जैसे कि विषैला सांप है, अगर दूध को भी छू देगा तो सारा दूध पॉइजनस हो जाएगा। मतलब जिस तरह जो है विषैले सांप के डंक से कोई नहीं बच सकता है, उस पर उसका इफेक्ट आता ही आता है। अरे सांप जो है दूर से फुफकार मार देना तो उसका इफेक्ट आप पे आ जाता है। इसी तरह यहां राजा के बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि सामान्य राजा जो है वो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से अलग नहीं रहते हैं, उनके साथ उनका इफेक्ट आता है। इसलिए उनको जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ये विषैले सांप के समान हैं। अगर आप उनके कांटेक्ट में आओगे, और कैसे कांटेक्ट में, अब आगे चर्चा दी है। इसी प्रकार स्त्री चाहे काठ की पुतली क्यों ना हो, उसके रूप को स्पर्श करने मात्र से मनुष्य विचलित हो उठता। शास्त्र में चर्चा आती है कि काम आपके अंदर आता कैसे। काम का मतलब है, ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में लेंगे तो काम का अर्थ है कामनाएं, और अगर शॉर्ट प्रोस्पेक्टिव में लेंगे तो काम का अर्थ है लस्ट, अट्रैक्शन टुवर्ड्स विमेन, स्त्रियों के प्रति आकर्षण। तो यहां चर्चा आती है कि शास्त्र कहता है कि काम आप पे प्रवेश कैसे करता है। तो उसका एक ही आंसर है कि काम प्रवेश करता है आंखों से, आईज, और आंखों का जो विषय है रूप है। तो यहां रूप की चर्चा हो रही है कि रूप स्पर्श करना है किसका, चाहे कठपुतली क्यों ना हो, उसकी जो शेप है उसका जो स्ट्रक्चर है, जब वो आपकी आंखों से आप में प्रवेश करता है तो आपको इम्बैलेंस कर देता है, आपके मन को व्यथित कर देता है, आपके मन को विचलित कर देता है। अब यहां जो है थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। चाणक्य पंडित ने अपनी नैतिक शिक्षाओं में कहा है, त्यज्य दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम, कि मनुष्य को भौतिकतावादी लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। क्या पॉसिबल है? क्या हम भौतिकतावादी लोगों की संगति त्याग सकते हैं? पहली बात तो इसको अंडरस्टैंड करना होगा कि इसका अर्थ क्या है। दूसरा है, और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत लोगों की संगति करनी चाहिए। हम आध्यात्मिक लोगों से जो उन्नत लोग हैं उनकी संगति करते हैं, परंतु क्या हम में इफेक्ट आता है? ये अगर दो बातें समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, बस में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपकी शादी ब्याह ये वो सब जगह जाते हैं, आपकी मुलाकात जो है दसियों लोगों से होती है। दुकान में बैठे हैं, हर एक मिनट में कस्टमर आ रहा है, संगत हो रही है ना। मेरा लड़का शराब की दुकान पे काम करता है परंतु शराब नहीं पीता। मेरे लड़के के सारे मित्र शराबी हैं परंतु मेरा लड़का शराबी नहीं है। मेरे पुत्र के सारे मित्र जो हैं गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, परंतु मेरा बेटा नहीं खाता। इससे क्या निष्कर्ष निकलता कि उस संगत का असर मेरी संतान पे, मेरे पुत्र पे नहीं हुआ। मतलब उनके गुण जो है मेरे पुत्र ने एक्वायर नहीं किए, उसने समागम नहीं किया उन गुणों का, छोड़ दिया है, दूर है, अनदेखा कर दिया है, अनसुना कर दिया है, उनको अपने साथ संसर्ग नहीं होने दिया, वो गुण उनके साथ थे, उनके साथ ही चले गए, मेरे पे उन गुणों का कोई असर नहीं है। मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, सारे बच्चे गाली देते हैं, मेरा बच्चा गाली नहीं देता, सीखा नहीं उसने उनसे, लर्न नहीं किया। मतलब भौतिकतावाद लोगों की संगति त्याग देने का अर्थ यह है कि अगर हम आज के समाज में, आज के परिदृश्य में देखें, तो क्या हम समाज के अंदर जो भौतिकतावादी लोग हैं उनसे दूर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। परंतु रिक्वायर्ड क्या है कि उनके अंदर जो गुण है उनका समावेश अपने पे ना होने दें, उनका समागम अपने में ना होने दें। मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूं उस मार्ग से विचलित ना हूं, उसी मार्ग पे लगा रहूं। उनका जो आना जाना, मिलना जुलना, काम धंधा, बिजनेस, नौकरी मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, मेरे को अपने मार्ग से हटा नहीं सकती। वो मेरा एक भौतिक संसार में रहने का मजबूरी है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे फैक्ट्री चलानी है, मुझे दुकान चलानी है, मुझे नौकरी करनी है, जिससे कि मेरी जीविका है। परंतु जीविका के अंदर जिन लोगों से मेरा संसर्ग होता है, जिन लोगों से मेरी मुलाकात होती है, वो लोग मेरे को मेरे अंदर जो विचार हैं, मेरे जो गुण हैं, जो मैं भौतिकतावादी लोगों को छोड़ के आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों की संगत कर रहा हूं, उससे मेरे को विचलित नहीं कर सकते। मैं उन गुणों को एडॉप्ट नहीं करता, वो गुणों को मैं एडॉप्ट नहीं करता। आज मेरा मित्र था, बहुत दिनों के बाद मिला, उसने कहा पान खा ले तंबाकू वाला, मैंने खा लिया, मिला, बहुत अच्छी बात है। परंतु उसका गुण है, अवगुण है, पान खाना, तंबाकू वाला खाता है, सुनता नहीं किसी की बात, पर उसका अवगुण मैंने अडॉप्ट नहीं किया, मैंने पान नहीं खाया। हाय हेलो हुई, मुलाकात हुई, 5-10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे बातचीत हुई, हुई चलो, उसके बाद वो अपने घर, मैं अपने घर। उसका कोई भी अवगुण जो है मैंने अडॉप्ट नहीं किया, मैंने अपने अंदर नहीं लिया। अब आती बात, आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों की संगति करनी चाहिए। होता क्या है, भक्तों से मुलाकात होती है, तो क्या तुम भक्त बने? नहीं प्रभु जी, अभी मैं इतना कहां, मैं हो नहीं पाता। इसका मतलब यह है कि आप उनके संग में हो, फिर भी संगति आपने नहीं करी, क्योंकि उनके गुण आपके अंदर नहीं आए। भक्तों के गुण आपके अंदर आने चाहिए, आपको उनसे लर्न करना है, उनसे सीखना है, उनको सीखने के बाद उनके गुण आपके अंदर आएंगे। इसका मतलब है आपने एक्चुअल संगति करी है, नहीं है तो आपने संगति नहीं करी। आप मैकेनिकली मंदिर में आए, भक्तों से मिले, मैकेनिकली बाहर चले गए, आप पे कोई असर ही नहीं हुआ। अरे भाई कथा सुनी थी, कोई असर हुआ? अरे कुछ नहीं, बोलते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम तो बड़े लिखे विद्वान हैं, हमको उनसे कम है क्या? हमने भी MBA किया है, हमने भी MBBS किया है, हमने भी BTech किया है, हम भी विद्वान है, वो तो बोलते रहते हैं। तो संगति मुझे त्यागनी चाहिए, तो यही चैतन्य महाप्रभु ने कहा, असत संग त्यागे यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण क्या है? असत का संग त्याग दें। असत में क्या बोला? स्त्री संग त्यागी। अब पत्नी को छोड़ दें क्या? स्त्री संग त्यागी मतलब पत्नी को छोड़ दें। वहां ये देखना है कि स्त्री, किस स्त्री का आपको संग त्यागना, क्या संग त्यागना, अर्थात संग करना ही नहीं है। त्यागने की बात तो बाद में आई। प्रभुपाद ने एक बात बड़ी स्पष्ट कही है कि भाई हमारे जो समाज के अंदर दृष्टि है, दृष्टि से जब काम अंदर जाता है तो उस काम को रोकने का तरीका क्या है? यहां चर्चा आ रही है स्त्री की, कठपुतली काट के भी क्यों ना हो, उसके स्पर्श मात्र से कामुकता जाग जाती है। तो स्त्री के बारे में प्रभुपाद ने हमारे वैष्णव साहित्य से उठाकर घोषित करते हुए एक बात कही, वो व्यक्ति का सोचने का तरीका बदल देती है, उसका नजरिया बदल देती है। क्या कहा? कि स्त्री चाहे बालिका हो चाहे वृद्ध माता है, जब आपने उसको मां स्वीकार कर लिया तो आपके सोचने का नजरिया बदल गया। माता के बारे में कोई बुरी बात सोच सकता क्या? माता के बारे में कोई ऐसी बात आपके दिमाग में आती है जो किसी साधारण स्त्री को देखने के बाद आती है? नहीं आएगी, क्योंकि तो अभी भी हमारा जो कल्चर है, हमारी जो वैल्यूज हैं, वो मां को पूर्ण सम्मान देती है। तो उन्होंने कहा बालिका हो या वृद्धा स्त्री, वो माता के समान है। तो यहां पर चर्चा आ रही है कि आप भौतिकता व्यक्ति कितना भी योग्य क्यों ना हो, विषैले सर्प से अधिक अच्छा नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि सांप भयानक तथा विषैला होता है और उसका फन मनियों से अलंकृत होता है, तब भी कम विषैला है, कम घातक नहीं होता। अजी उसका संग करूंगा, बड़ा अमीर आदमी है। तो अमीर आदमी होने से काम क्रोध लोभ मद मत्सर समाप्त हो गया क्या? बताइए, मनिया है, मनी की, पैसे की, जैसे सांप के ऊपर मनियों की चर्चा हो रही है, ऐसे उसकी लाइफ के अंदर पैसे की चर्चा, धन की चर्चा हो रही है। तो उसका संग करने से उस व्यक्ति का काम क्रोध लोभ मोह मत्सर समाप्त हो गया क्या? नहीं हुआ, वो एग्जिस्ट कर रहा है। ईर्ष्या ज्यादा है, ईर्ष्या ज्यादा है, जलन ज्यादा है। तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों? एक सुनो ऐड देखा करते थे हम, तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों? वो जो ईर्ष्या का भाव है, जलन आती है, फिर ईर्ष्या आती है, फिर द्वेष आता है। द्वेष जब हो जाता है तो उसके बाद दूसरे को नीचा दिखाने की क्रोध की प्रवृत्ति आ जाती है, क्रोध आ जाता है। क्रोध आता है तो आदमी कोई ना कोई गलत कार्य कर बैठता है, स्मृति का विभ्रम हो जाता है, भवकूप में गिर जाता है, कोई गलत काम करता है। यही कहा, ध्यायते विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। क्रोध की उत्पत्ति का बिगिनिंग कहां से है? विषयों का चिंतन करने से। सबसे खतरनाक है विषय, जो संसारिक अट्रैक्शन है। तो जो व्यक्ति संसारिक अट्रैक्शन में बंधा हुआ है उसका संग करेंगे तो वैसा ही है जैसे विषैले सांप का संग करना। विषैला सांप आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा व्यक्ति जो संसारिक वृत्तियों में उलझा हुआ है उसका संग करेंगे तो आप पुनः भवकूप में गिर जाएंगे, उससे बच नहीं सकते आप। यहां कह रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्ति को अपने मन को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना चाहिए, जिससे मन के साथ लगे हुए उसके शत्रु दमित हो जाएं। अगर आपके पास भगवान की सेवा आपने समझ ली है और आप उस सेवा में 24 घंटे व्यस्त हैं, तो आपके पास इतने काम हैं कि आपको दूसरी बात सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैं बेलगाम में था, मेरा पुत्र वहां पढ़ता था, तो मैं उसके पास महीना दो महीने डेढ़ महीना जाके रहा करता था, साल में दो बार। तो जो भक्ति रसामृत महाराज हैं, उन्होंने मेरे को हिंदी भाषी होने के नाते कथा में भी लगा दिया, विलेजेस में भी जाना है और मंदिर में भी देनी है हिंदी की कथा, और प्लस डीटी वर्शिप पे लगा दिया उन्होंने मेरे को। अब डीटी वर्शिप करने चले गए तो दीवार पे घड़ी लगी हुई है जो कि मिनट्स टाइम शो कर रही है, मिनट्स एंड सेकंड्स तक का टाइम शो कर रही है डीटी हॉल में। 5:20 में हॉल के अंदर गए हैं और 7:15 तक कुछ और सोचने की फुर्सत ही नहीं है। एक के बाद एक काम है कि मन में दूसरी बात का विचार आता ही नहीं। तो मैं कह के गया अच्छा बेटा मैं तेरे को फोन कर दूंगा, तू जाग जाइयो, फिर तेरे को एग्जाम में जाना है। वहां सेवा में इतना व्यस्त था कि फोन करना ही भूल गया, मुझे याद फोन करने का समय ही नहीं मिला। मतलब इतनी जब भगवान की सेवा में लग जाते हैं और आप मन से लग जाओगे और आप लगातार सेवा में लगे हुए हो तो आपको किसी दूसरी बात का अवसर ही नहीं मिलेगा, सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा, सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप सोच पाओ। मन में कोई दूसरी बात आएगी नहीं, कोई दूसरा विचार आएगा नहीं। तो यहां ये चर्चा आ रही है कि जिसे सेवा में लगाए रखता है, सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखता है, उसके मन के लगे हुए शत्रु दमित हो जाते हैं। फिर वो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आपको तंग नहीं करता, आपको परेशान नहीं करता। अब उसने कहा है कि भगवान ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से मन कृष्ण के चरण कमलों में निरंतर लगा रहता है, जिससे मन के शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर नहीं मिल पाता। इसमें एक कंडीशन लगाई है, वो कंडीशन क्या है कि जो जप करना है वो ऊंची आवाज में होना चाहिए, आवाज कान में जानी चाहिए, श्रवण भी होता है उससे और मुख से करते हैं तो कीर्तन होता है। दो विधियां आप कर रहे हो, जब आप बोलते हो उच्च स्वर में बोलते हो तब आपको और कोई बात दिमाग में नहीं आती, और कोई बात मन में नहीं आती, फुर्सत ही नहीं होती दूसरी बातों के लिए। अरे मैंने उसका आज बदला लेना है, उसने मेरे को तंग किया था कल, आपका दिमाग उधर जाता ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग तो उस वक्त मंत्र उच्चारण में लगा हुआ है और मंत्र उच्चारण कान से सुना जा रहा है, तो दोनों इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो है इस तरीके से भगवान की सेवा में लगा रही हैं कि आपका मन किसी दूसरी तरफ विचलित होता ही नहीं, डिस्टर्ब करता ही नहीं। तो यहां कह रहे हैं हमें मन के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए, उसे किसी भी परिस्थिति में इधर उधर नहीं लगाना चाहिए, एक बार उत्तेजित होने पर मन इस जीवन में विध्वंस कर सकता। अगर मन डिस्टर्ब हो गया और मन ने कोई गलत बात ठान ली या कोई गलत चीज जो है मन के अंदर प्रवेश कर गई, चाहे आंख से करे, चाहे नाक से करे, चाहे कान से करे, चाहे किसी भी ज्ञानेन्द्रिय से करे, तो वो जो है आध्यात्मिक रूप से उन्नत पुरुषों जो हैं उनके भी मन को विचलित करके फॉल डाउन करा देते हैं। और होता है फॉल डाउन, हमने देखा है, वैष्णवों का फॉल डाउन होता है, हमने ये बात देखी। तो यहां चर्चा आ रही है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी आचरण के द्वारा हरेक को सावधान करते हैं, सचेत करते हैं कि भौतिकतावादी पुरुष या स्त्री से भेंट करने से बचा जाए। भेंट करने से मुलाकात तो करनी पड़ेगी भाई, मिलेंगे तो मिलेंगे, पर उनके उनके अवगुणों को अपने अंदर नहीं लेना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बात समझने वाली है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की, नित्याय गौर प्रेमानंदे।